आचार्य रचित जय धौला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार, जिसका नाम है स्थिति विभक्ति, उसमें हम पृष्ठ संख्या 86 पर आ गए, 86। एटी सेवन का हमने पढ़ लिया था थोड़ा। हाँ, ये अभी हम सासादन से वहां से देखना है हमको, पॉइंट नंबर 156। जघन्य कालानुगम की बात चल रही थी अपने, नाना जीवों की अपेक्षा बात है, यानी जघन्य स्थिति का लगातार काल कितना हो सकता है, वो मार्गणाओं में हम देख रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है यहाँ पर, तो ओग की अपेक्षा तो जघन्य एक समय होगा और उत्कृष्ट संख्यात समय होगा, क्योंकि वो क्षपक के सूक्ष्म सांप्राय के अंत में होता है, और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले तो सदर्वकाल रहेंगे। अलग अलग मार्गणाओं में हम देख रहे थे और अभी हम सासादन की बात करने जा रहे हैं, 86 पृष्ठ पर। सासादन सम्यक दृष्टि जीवों में, ये सांतर मार्गणा है, तो सासादन में जघन्य कब होता है? हाँ? पहले समय में जघन्य होगा कि उत्कृष्ट होगा? अंतिम समय में जघन्य होगा। निकालो स्वामित्व, ये 25 पृष्ठ पर। देखो 43 नंबर का पॉइंट है ना, उसमें नीचे से चौथी लाइन, जो सासादन समय दृष्टि हुआ है उसके अंतिम समय में मोनी का जघन्य स्थिति सत्व होता है, मिला? 25 पृष्ठ पर हमें देखो, तो ये नाना जीवों की, एक जीव की अपेक्षा तो एक समय घटित होगा अंतिम समय, और नाना जीवों की अपेक्षा अगर बात करनी है तो लगातार कोई ना कोई उसमें आए जघन्य स्थिति के साथ रहे, तो उत्कृष्ट सत्वकाल संख्यात समय बताया, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य सत्वकाल एक समय और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण, ये मार्गणा का काल बताया। अजघन्य में मार्गणा का काल कितना है नाना जीवों की अपेक्षा? हाँ, अधिक से अधिक हो सकता है कि एक समय तक होगा कोई, फिर अंतर पड़ा, पहले अंतर था फिर एक समय सासादन वाला कोई जीव उसमें आया, एक समय में रहा मिथ्यात्व में गया, दूसरे समय में और कोई जीव सासादन को प्राप्त नहीं हुआ, तो अजघन्य का जघन्य काल एक समय होता है, और लगातार कोई ना कोई जीव सासादन को प्राप्त करते रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक रहेंगे। अब विशेषार्थ, ये तो टोटल विशेषार्थ बता रहे हैं, अभी जघन्य कालानुगम की जो बात हमने देखी थी वहां से विशेषार्थ बता रहे, यानी 84 पृष्ठ से जो हमने पढ़ा था ओग से शुरू करके, मोनि की जगन्य सत्व स्थिति शपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के अंतिम समय में प्राप्त होती है। वहाँ एक समय वाला जो अंतिम निषेक है उसी को जगन्य स्थिति कही है। तथा क्षपक श्रेणी पर चढ़ने का जघन्य काल एक समय, ये जघन्य काल जब कह रहे तो नाना जीवों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। कोई ना कोई जीव उसमें चढ़ता रहे तो, और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। अतः ओग से जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय, सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय को प्राप्त करने वाले जीव नाना जीव है ना, तो कोई एक प्राप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे लगातार कोई ना कोई उसमें आए तो संख्यात समय घटित होते हैं। ओग से अजघन्य स्थिति का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। उस एक समय को छोड़कर अन्य सभी जो मुनि की स्थिति वाले जीव है वो सभी अजघन्य वाले हैं। हमने देखा था जघन्य के अलावा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य, वो सब अजघन्य ही कहलाएंगे। मूल में दूसरी से लेकर छठवी पृथ्वी तक के नारकी, मनुष्यत्रिक आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं गिनाई है जिनमें जघन्य और अजघन्य स्थिति का काल ओघ के समान बन जाता है। इसके कारण भिन्न भिन्न हैं। जैसे मनुष्य में अगर कारण ढूंढेंगे तो वही है, क्योंकि उसमें वो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय हो सकता है। अब दूसरी से छठी पृथ्वी तक के नारकी में भी जो ऐसा ही बताया, क्या जघन्य एक समय और उत्कृष्ट संख्यात समय दूसरे से छठी नरक में, तो वहां जघन्य स्थिति कब होती हमने देखी थी, उत्कृष्ट आयु के साथ आया हुआ, शुरू में समय तो प्राप्त किया विसंयोजना की और आयु के अंतिम समय में उसकी जघन्य स्थिति होती है। तो ऐसे लगातार होता रहे तो संख्यात समय ही होगा, उसका कारण भी नहीं। वहां तो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला था और यहाँ जघन्य स्थिति के साथ वो अंतिम समय में लगातार कोई ना कोई जीव आवे, ऐसी बात है, तो वो संख्यात समय घटित होती है। समय दृष्टि जीव मनुष्य में आते हैं, नहीं इसका कारण ऐसा नहीं लेना है। सभी उसकी, हाँ सभी बातें फुलफिल होनी चाहिए। हाँ दूसरी पृथ्वी से लेकर नारकियों में और ज्योतिषियों में तो यह कारण है कि यहां बता रहे अभी कारण भिन्न भिन्न कहते ना, जो उत्कृष्ट आयु के साथ उत्पन्न हो और उत्पन्न होने के पश्चात अंतर्मूर्त काल में सम्यक दृष्टि होकर अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर ले, उनके अंतिम समय में जघन्य स्थिति होती है। ऐसे जीव मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न हो गए, अतः उनका प्रमाण संख्यात ही होगा। आपने जो बताया ना वो लिखा है यहाँ पर, मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं और मनुष्य संख्यात है। यही कारण है इन मार्गणाओं में जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा। सर्वार्थ सिद्धि और वैक्रिक का योग में भी करीब इसी प्रकार का कारण जानना चाहिए। करीब इसी प्रकार का, क्योंकि वहाँ हमने देखे थे दोनों में एक ही जीव लिया, एक सा ही क्षपक श्रेणी उपशम श्रेणी दो बार चढ़ के आया है, क्षयिक समय दृष्टि है, सर्वार्थ सिद्धि में आया है और उसके अंतिम समय में जघन्य स्थिति होती है और तब उसका वैकृत कायोग होगा, तो वैकृत कायोग वाले के जघन्य स्थिति हो जाती है। विभंग ज्ञान में यह कारण है कि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला उपरिम क्रैवेग का देव यदि अंतिम अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो उस विभंग ज्ञानी के अंतिम समय में जघन्य स्थिति पाई जाती है। अच्छा, उन्होंने अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व को प्राप्त कराया और मिथ्यात्व में जाने के बाद नई जो स्थिति स्थिति बंद हो रहा है वो सत्ता वाले से कम हो रहा है, तो वहां भी घटता चला जाएगा उसका स्थिति सत्व। ये मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं, अतः इनके भी जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है, संख्यात समय। इनके अतिरिक्त जो शेष मार्गणाएं गिनाई है उनकी जघन्य स्थिति मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होती है, अतः उनमें भी कौन सी मार्गणा हो सकती है? पंचेंद्रिय होगी, पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस रस पर्याप्त, हाँ, उनमें भी जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा, यानी संख्यात समय कहा, तथा इन सब मार्गणाओं में अजघन्य स्थिति का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है। नारकियों में एक जीव की अपेक्षा जघन्य स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब यदि इनमें नाना जीव जघन्य स्थिति वाले हो तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक ही होगी। जब नारकियों में कहा तो सामान्य नारकी की बात है, तो पहले नरक में घटित होगा। पहले जो हमने देखा था दूसरी से छठी पृथ्वी तक, वो लगातार संख्यात समय देखे थे और वो अंतिम समय में प्राप्त होता है। यहाँ जो बात होती है वो असंगी में से उत्पन्न हुआ जीव है, उसकी बात चल रही और वो लगातार कितने काल तक चलेगा, अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक होंगे। अतः इनमें जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय नाना जीवों की अपेक्षा और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी आदि मार्गणाओं में जानना चाहिए, जिनका निर्देश मूल में किया ही है। जब नरक में कहते हैं तो पहले नरक की ही यहाँ बात है। सभी नरकों में जघन्य स्थिति कहाँ पाई जाती है? वो असंगी में से उत्पन्न हुआ, परंतु वो पहले नरक में ही घटित होता है। सामान्य से कहेंगे तो नारकी कहेंगे, विशेष से कहेंगे तो पहला नरक कहेंगे। सातवीं पृथ्वी में एक जीव की अपेक्षा जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय, ये हमने बहुत बार देखा था। सातवीं पृथ्वी में यानी सातवें नरक में उत्पन्न हुआ है, अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त किया, अनंत अनुबंधी की विषय योजना की, पूरे आयु तक वहाँ पर सम्यक तो सहित रहा, अंतिम एक अंतर्मुहूर्त बाकी रहा तो मिथ्यात्व में आया। मिथ्यात्व के में जाने के बाद भी जहाँ तक शक्य हो वहाँ तक स्थिति कम बांध रहा है, जितनी सत्ता में है उससे भी कम बंद हो रहा है, तो क्या होगा? एक एक निषेक वहाँ भी गलेगा और अंतिम समय में जघन्य स्थिति होगी। तो हो सकता है एक जीव की अपेक्षा एक समय भी हो और एक जीव की अपेक्षा लगातार वो समान स्थिति बांधता रहेगा, तो अंतर्मुहूर्त घटित किया था हमने एक जीव की अपेक्षा। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा देखना है, तो जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा पहले पड़ रहे हैं, अंतर्मुहूर्त है। अतः यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण बन जाता है। सातवें नरक में जघन्य वाली जो स्थिति है अंतर्मुहूर्त वाला प्रमाण है वो, तो कोई ना कोई जीव उसमें उत्पन्न होता रहे, यानी उतनी जघन्य स्थिति करता रहे और ऐसी बात चलती रहे तो पल्य के असंख्यातवे भाग काल तक चलती रहेगी। जैसे हमने सासादन में और सम्यक मिथ्यात्व में देखा था उस मार्गणा का काल, ऐसा यहाँ लेना। हाँ, क्या प्रश्न आपका? जो सासादन में आए वो तो उपशम में से ही आता है। हाँ, तो द्वितीय उपशम में से गिर के सासादन में जाता है कि नहीं जाता, इसके लिए दो मत है। कोई कहते जा सकता है, कोई कहते नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अनंत अनुबंधी की विषय योजना की है उसने द्वितीय उपशम वाले में, उसमें भी दो मत हैं। और हमने पहले देखा था जिसने अनंत अनुबंधी की विषय योजना की है वो भी दूसरे में आ सकता है, क्योंकि दूसरे में आने पर उसकी संयोजना होती है, ऐसा हमने देखा था। अब हम आगे पढ़ेंगे तिरियंचो में जघन्य स्थिति वाले जीवों का प्रमाण भी अनंत है। जब तिरियंच कहते हैं तो मेजॉरिटी उसमें तो एकेंद्रियों की है और एकेंद्रिय जघन्य स्थिति करते। तिरियंचों के लिए जघन्य कहाँ होगी? एकेंद्रियों में। सभी जीवों की अपेक्षा जघन्य कहाँ होगी? शपक में। सभी जीवों की मैंने पूछा, तिरियंच नहीं, सभी चारों गतियों की अपेक्षा जघन्य स्थिति शपक सूक्ष्म है जो मनुष्य ही होते हैं। हम तिरियंचों की बात कर रहे हैं। तो तिरियंच पंचेंद्रिय हो, संयता संयत भी हो, तो भी अंत कोड़ा कोड़ी ही स्थिति रहेगी। परंतु एकेंद्रिय वाले मिनिमम पॉसिबल, जो हत समुत्पत्ति हो जाते हैं और उनका बंध भी एक सागर से कम होगा, तो वहां ये जो जघन्य वाले भी अनंत है और जघन्य वाले भी अनंत है। बादर भी है ना, बादर निगोद है ना, अनंत वाले। और जब मार्गणा की बात करेंगे तो अपनी अपनी मार्गणा का जघन्य लेना। वहां पर सूक्ष्म वे भी उनकी अपेक्षा से जघन्य हो सकता है। वहां पर अभी हम जो नारकी वगैरह में घटित कर रहे हैं वो तो मार्गणाओं में ही घटित कर रहे हैं, उनके लिए जघन्य देख रहे हैं। ऐसे यहां इनके लिए जघन्य देखना। तो तिरियंचों में जघन्य स्थिति वाले जीवों का प्रमाण भी अनंत है। अतः यहां जघन्य स्थिति का काल सर्वदा कहा, यानी जब तिरियंचों में कब होते हैं? सर्वदा होते हैं, क्योंकि उनमें हत समुत्पत्तिक वाले वो बहुत सारे जीव होंगे। मूल में सब एकेंद्रिय आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए। यद्यपि उनमें से बहुत सी मार्गणाओं में जीवों का प्रमाण असंख्यात है, फिर भी वह संख्या बहुत बड़ी है। कौन कौन सी ऐसी असंख्यात वाली मार्गणाएं हैं? अभी सूक्ष्म पृथ्वी का एक है, सूक्ष्म जीव तो असंख्यात है ना, बहुत बड़ी संख्या है। अतः उनमें अजगण्य स्थिति वालों का काल सर्वदा मान लेने में कोई आपत्ति नहीं आती। अजगण्य की बात कर रहे हैं। जघन्य कहना था कि अजगण्य कहना था? अजगण्य तो हमेशा रहेंगे ही, मगर यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं? अजगण्य तो हर मार्गणा में हमेशा ही पाए जाएंगे। अरविंद भैया, जघन्य चाहिए कि अजगण्य चाहिए? इसको जघन्य करे तो, क्योंकि अजघन्य वाले तो हमेशा होते ही होते हैं। पेंसिल से करो और निकाल देना। क्योंकि हमने देखी थी उन मार्गणाओं में, जरा निकालना, हमने जो लिस्ट देखी थी सभी एकेंद्रिय कहे थे। ये पेज नंबर 85, 150 नंबर का पॉइंट जो चल रहा था अपना, कल देखा था हमने। तिरियंचों में हमने देखा जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले का सत्वकाल सर्वदा है। अजघन्य तो हम समझ सकते, परंतु वहां जघन्य की बात चल रही थी और उसमें और कौन कौन सी मार्गणा है? तो सभी एकेंद्रिय। हाँ सुनो, तो पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक लिए, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त लिए, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त उनको छोड़ा। वो काय में चले जाते ना, अलग अलग काय वालों की, अगर बादर एकेंद्रिय इतना कहेंगे तो उसमें हमेशा हो गए, क्योंकि वो सारे अनंत निगोद राशि उसमें पड़ी है बादर में, केवल बादर एकेंद्रिय कहेंगे तो। अब यहाँ कायिकों की बात चल रही है, तो पृथ्वी कायिक अगर देखते तो उसमें सूक्ष्म भी है, बादर भी है, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। अन्य की संख्या ज्यादा है असंख्यात होते हुए भी, परंतु बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त को यहाँ अलग निकाला है। कल हमने इस पर बहुत चर्चा भी की, आगे भी ऐसी ये सारी जो इतनी मार्गणा यहाँ गिनाई है उनकी संख्या भी ज्यादा है और वहाँ जघन्य भी हमेशा ही हो गए उन मार्गणाओं में। वहाँ ऐसा भी समझना वो अपने अपने योग्य जघन्य उनका वहाँ होगा। या एक इंद्रियों में जितना जघन्य होता है वहाँ वो भी पाया जाएगा। अब हाँ यहाँ आते हम 87 पर। यहाँ जघन्य रखो क्योंकि अजघन्य तो हमेशा मान लेने में तो कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, परंतु जघन्य तो किसी किसी में होगा या कभी कभी होगा, परंतु इनकी संख्या इतनी बड़ी है तो उनमें जघन्य वाले भी हमेशा ही पाए जाएंगे। लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा से एक समय है। हमने देखा था हत समुत्पत्ति के केंद्रियों में से लब्धि अपर्याप्त में आया है, पहले समय में जघन्य होगा, या हमने देखा था विग्रह में उसका जघन्य होगा, बाद में वो तो अजघन्य हो जाएगा। यदि इनमें नाना जीव जघन्य स्थिति वाले हो तो कम से कम एक समय तक। एक समय तक कैसे आएंगे? क्योंकि जघन्य स्थिति पहले समय में होती इसलिए एक समय तक कहा, दूसरे समय में कोई जघन्य वाला आया नहीं उसमें, ऐसे हो सकता है ना? और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवे भाग काल तक ही होगे। जघन्य के साथ जघन्य से लगातार कोई ना कोई जन्मता रहे उसमें तो आवली के असंख्यातवे भाग काल तक होंगे। अतः इनमें जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट आवली के असंख्यातवे भाग का है। ये बात समझ में आई है? अजघन्य का कितना होगा? उसमें मिनिमम एक समय घटित हो सकता है क्या? कैसे? हाँ, जघन्य किया और फिर हाँ, जो एक केंद्रीय जीव दो विग्रह के साथ लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न हो रहा है उसके प्रथम विग्रह में अजघन्य स्थिति होकर दूसरे समय में जघन्य स्थिति होगी। तो अजघन्य एक जीव की अपेक्षा एक समय होगा और ये मार्गणा सांतर है इसलिए यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भी एक जघन्य जो अजघन्य है एक समय घटित हो सकता है। ख्याल है ना कि कोई है ही नहीं वहां तो अजघन्य के साथ, यानी पहले अंतर था और अजघन्य के साथ कोई एक या दो ज्यादा जीव वहां आ गए हैं तो उस समय के लिए अजघन्य वाले उतने जीव है, उसके नेक्स्ट समय में वे जो आए हैं वो जघन्य हुए हैं और वहां और कोई जीव उसमें उत्पन्न नहीं हुए, यानी अजघन्य वाला एक भी नहीं ऐसा होगा तो अजघन्य एक समय के लिए रहे। कल हमने बहुत इसको चर्चा की थी। तो यहाँ कहते हैं देखो, प्रथम विग्रह में अजघन्य स्थिति होकर दूसरे समय में जघन्य स्थिति होगी और विग्रह के दो समय कम चाहिए ना, नहीं दो समय खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण आयु में से कम कर देने पर शेष आयु का काल भी अजघन्य स्थिति का है। ये कब होगा? अभी ये अजघन्य वाले जघन्य हुए दूसरे समय में और फिर वो अजघन्य दोबारा अजघन्य हुए, कितने काल तक रहेंगे? रिमेनिंग आयु कितनी है? वे दो समय कम कर देना और ये खुद्दा भव ग्रहण में से दो समय कम, तो शेष आयु का काल भी अजघन्य स्थिति का है। अतः अजघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय या दो समय कम खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण कहा है। ये एक समय कम या दो समय कम नहीं कह सकते हम यहाँ पर, या तो एक समय घटित होगा या दो समय कम खुद्दा भव ग्रहण कहे, क्योंकि यदि दो समय कम ही हो सकता था तो एक समय या दो समय कहने की जरूरत ही नहीं थी। ख्याल है ना, जघन्य अगर दो समय हो सकता है, जहां तीन समय जघन्य हो सकते, तीन समय कम कर दो, वहां ऐसा कहेंगे एक या दो या तीन? ऐसा तो नहीं कहेंगे, जो मैक्सिमम हो सकता है उतना ही बताएंगे। तो या तो दो समय कम खुदा भव ग्रहण या ओनली एक समय, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग भाषा लगती है। पहले जो हमने पढ़ा था वहां दो समय कम खुदा भव ग्रहण या एक समय ऐसा स्पष्ट लिखा था। देखो निकालो 85 पृष्ठ पर 151 नंबर के पॉइंट में, वो अंत में लिखा है ना, जगन्य दो समय कम खुदा भव ग्रहण प्रमाण या एक समय है। ये बाद में एक समय क्यों लिखा, नहीं तो एक या दो समय कम ऐसा लिखते ना। हाँ। और उत्कृष्ट पल्लोकम का असंख्यात्व भाग है, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सांतर मार्गणा है, जिसका उत्कृष्ट काल पल्लोकम के असंख्यात्वे भाग मात्र है, अतः अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग कहा। ये तो आसा ना, वो मार्गणा कितनी है, कितने काल तक नाना जीवों की अपेक्षा चले, तो पल्ले के असंख्यात्वे भाग का, और नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम चले तो मार्गणा की बात पूछ रही हूं मैं। वो मार्गणा नाना जीवों की अपेक्षा रहे तो कितने काल तक रहेगी, एक समय होगी क्या, मैं मार्गणा की बात पूछ रही हूं। क्योंकि कोई जीव उसमें उत्पन्न होता है, और मान लेते बाद में कोई नहीं उत्पन्न हुआ, तो भी जो उत्पन्न हुआ है वो शुद्र भव तो वहां बिताएगा, इसलिए शुद्र भवन उसका जघन्य काल मार्गणा का लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नाम की जो मार्गणा, यहाँ जघन्य अजघन्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उस मार्गणा का नाना जीवों की अपेक्षा काल कितना है जघन्य, तो क्षुद्र भव। और लगातार कोई ना कोई जीव उसमें आता रहे, लगातार है ना, ये इसमें से मरकर जाए उसके पहले, ऐसा लगातार करता, क्योंकि लगातार उत्पन्न होने का काल, प्रति समय उत्पन्न हो, प्रति समय कोई उत्पन्न होगा तो आवली का संख्या था, प्रति समय, प्रति समय एक एक जीव उसमें या दो दो चार चार जीव आते रहे तो अवली का संख्या था। परंतु उस मार्गणा में रहने का जो अंतर्मूर्त है, क्षुद्र भव प्रमाण अंतर्मूर्त, वो जब तक नहीं बीतता तब तक बीच बीच में आएंगे जीव, तो ऐसा कहां तक चलेगा, तो पल्ले के असंख्यात विभाग तक। इसलिए यहां अजघन्य स्थिति का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग कहा। अब जघन्य काल इस मार्गणा का कितना है, तो एक खुदा भव ग्रहण, उस जघन्य काल में से वो पहले दो समय बाद किए तो दो समय कम खुदा भव ग्रहण, ये एक अपेक्षा हुई। और एक समय कैसा घटित किया था, कि पहले समय में अजघन्य होकर दूसरे समय में जघन्य हुआ। यानी अभी हम ऐसा लेते, कोई जीव लब्धि पर्याप्त में नहीं था, एक या अधिक जीव वहां उत्पन्न हुए अजघन्य के साथ, दूसरे समय में सारे जघन्य हो गए, तो वहां अजघन्य वाले कितने रहे, और प्रोवाइडेड कोई नया भी नहीं आया वहां अजघन्य के साथ, यानी जितने हैं वो सारे जघन्य में है, तो अजघन्य उनका एक समय के लिए घटित हुआ। ख्याल आया, कल आपको बैठ नहीं रहा था बहुत बार। हाँ, अब ये लब्धि पर्याप्त मनुष्य की बात हो गई। अब आगे बादर पृथ्वी कायिक आदि पर्याप्तकों में, क्योंकि इन पर्याप्तकों को छोड़ा था, एक इंद्रियों में तो बादर उनको लिया था, परंतु एक एक काय को अलग गिनाया वहां। हाँ, बादर वायु काय या पृथ्वी काय पर्याप्त उनको छोड़ा था, उनमें एक जीव की अपेक्षा जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो पर्याप्त जीव ही जघन्य स्थिति बांध सकते हैं, तो कम से कम एक समय तक और लगातार अगर बांधे तो अंतर्मूर्त तक, जैसे हमने उत्कृष्ट में देखा था। ये कैसे जीव है जिन्होंने हत समुत्पत्ति तो है ही है वे, और जघन्य में जघन्य स्थिति का बंद कर रहे हैं, और लगातार जघन्य स्थिति का बंद करते रहे तो अंतर्मूर्त तक करेंगे। यदि इनमें एक जीव की अपेक्षा बात की उन्होंने, यदि इनमें नाना जीव जघन्य स्थिति वाले हो तो कम से कम एक समय, और अधिक से अधिक पल्लोपम के असंख्यात वे भाग काल तक होंगे, इसलिए उन्होंने सदा काल में इनको नहीं गिनाया था। कल जो अपनी पहले शंका थी ना, ये इसको क्यों छोड़ा है, तो ये जघन्य नाना जी उनकी अपेक्षा बात चल रही है। जघन्य स्थिति वाला कोई करे तो या तो एक समय या लगातार कोई ना कोई लगातार ने वो उसने जघन्य की है, और उसके हो सकते अंतर्मूर्त तक हो, उसको अजघन्य होने के पहले अन्य कोई जीव जघन्य कर दे, ऐसा लगातार होता रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। अतः इनकी जघन्य स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट पल्लोपम के असंख्यात भाग का, जघन्य की बात चल रही। मनुष्यों में हमने अजघन्य की बात देखी थी, ये पृथ्वी कायिक के बारे में समझ में आया, ऐसे अन्य कायिकों के बारे में, वनस्पति कायिक को नहीं लेना। जब वनस्पति कायिक कहते हैं तो निगोद आते हैं सब, और उनमें तो ये जघन्य भी हमेशा रहेंगे, अजघन्य भी हमेशा रहेंगे। उनके अलावा अन्य जो चार कायिक है उनमें बादर को लेना और पर्याप्तों को लेना, उसमें जघन्य का भी एक समय हो सकता है और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात भाग। इसलिए सदाकाल वाला जो था उनमें उन जीवों को नहीं लिया था, उनके अलावा अन्य को, एक इंद्रियों को, अन्य कायिकों को लिया था। अब योग में वैकृत मिश्र का योगियों में बादर में उसको भी लिया, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति का एक पर्याप्त वाले लेना। जब हमने बात की थी वनस्पति कायिक इन जनरल, उसके भेद करते हैं तो उसमें फिर बादर में तो वन प्रत्येक भी आते हैं और वो निगोद भी आते हैं। अरविंद भी कुछ पूछ रहे थे, अजघन्य तो हमेशा ही रहेंगे, अजघन्य जीव तो हमेशा है, ये जघन्य की बात चल रही है। जघन्य तो लगातार रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो रहेंगे ही रहे, बाद में उसमें फिर अंतर पड़ जाएगा, कोई भी नहीं है ऐसी बात हो सकती है। अजघन्य तो हमेशा ही है, जघन्य ही कभी कभी होगी, ये बात चल रही है। पर्याप्तों में करने वाले तो पर्याप्त है, मिनिमम पॉसिबल एक इंद्रियों में तो पर्याप्तों की होती है, फिर भी उनमें ये गैप पड़ सकती है। हाँ हाँ, आपका क्या कहना है? देखो अभी हमने यहाँ क्या देखा, अभी कहाँ पढ़ा हमने, वहाँ कहाँ आई बात, कौन सी पेज में, कौन सी नंबर में, बादर पृथ्वी का एक आदि। पल्ले का असंख्या तो भाग्य कहाँ है? हाँ, ऊपर किस में लिया था हमने, वो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में लिया था ना, नारकियों में बात वो अलग थी, नारकियों में असंख्यों के उत्पन्न होने की बात थी। हाँ, ये आवली का असंख्या तो भाग काल इतनी ही समानता होगी, वो कहाँ कहाँ होगी लगातार होने की बात, तो हमने उसमें भी देखा था, सासाधन में भी देखा था, या समय मिथ्यात्व में भी देखा था, उपशम सम्यक्त्व में भी देखा था, लगातार यानी हर समय, प्रति समय लगातार। हाँ, परंतु उस मार्गणा का काल अंतर्मूर्त है, उसमें ऐसा हो सकता है भी आवली के असंख्यात भाग काल के बाद दो आवली तक कोई नहीं आया उसमें, परंतु जो ऑलरेडी उसमें आए हैं वे उस अंतर्मूर्त काल में है, और वो लगातार आते ही रहे कोई ना कोई, जो कोई उपशम सम्यक्त्व में आए हैं, और उनका उपशम सम्यक्त्व पूरा होने के पहले पहले अन्य जो उसमें आ सकते हैं, आवली का असंख्यात अभाव किस लिए कहा? लगातार प्रति समय उसमें कोई ना कोई जीव उपशम समय तो प्राप्त करे, ऐसा कब तक हो सकता है? अधिक से अधिक आवली का असंख्यात अभाव। अब उसके बाद आवली मात्र हम बीच में काल गया समझते हैं, फिर और कोई आए जो पहले ऑलरेडी जिन्होंने प्राप्त किया था वो तो अभी उपशम सम्यक्त्व में है ही ना, तो उपशम सम्यक्त्व में अंतर नहीं पड़ा है, उसमें लगातार प्रति समय आने वालों में अंतर पड़ा है। तो प्रति समय उसमें आने का काल आवली का असंख्यात अभाव, और वो मार्गणा चलती रहे नाना जीवों की अपेक्षा तो पल्य का असंख्यात अभाव। ऐसे ही हाँ लब्धि पर्याप्त में भी ऐसे लिया, लब्धि पर्याप्त में लगातार कोई ना कोई जीव उत्पन्न हुए ऐसा कितने आवली का असंख्यात भाग काल तक बनेगा, लगातार उत्पन्न होते अधिक से अधिक की बात है। और फिर वो मार्गणा चलती रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग के, क्योंकि लब्धि पर्याप्त का काल कितना है? शुद्र भवग्रहण, वो भी छोटा एक अंतर्मूर्त ही है, तो उसमें से जीव मरकर अन्यत्र जाने के पहले और नए जीव उसमें आए, परंतु प्रति समय आए 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 ऐसा कितना होगा? आवली का संख्या तब। इसका डिफरेंस समझ में ना, वैकरिक मिश्र में भी ऐसा ही कहेंगे, लगातार उत्पन्न होते रहे तो आवली का संख्या तब, और वो मार्गणा चलती रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग काल, बाद में उसमें अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। यही बात यहां बता रहे हैं, ये जगन्य के साथ बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों की बात की उन्होंने। अब हम वैकिरेक मिश्र की बात पढ़ने जा रहे हैं। वैकिरेक मिश्र का योगियों में जघन्य स्थिति कब हो सकती है? क्षायिक सम्य दृष्टि उपशांत मोह से मरकर सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले जीव के वैकिरेक मिश्र कायोग के अंतिम समय में होती है। ऐसा जीव लिया पहले से ही वो स्थिति बहुत घटाई है, अब सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न होने के समय जितनी थी उसके बाद वैकिरेक मिश्र शुरू हुआ, मान लेते वो विग्रह में इसे गया है तो वहां उसका एक स्थिति गल गई। वैकिरेक मिश्र में आया लगातार एक 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 निषेक गलता जाएगा, तो वैकिरेक मिश्र के अंतिम समय में उसकी जघन्य स्थिति होगी। यतः इसका जघन्य काल एक समय है, यतः का अर्थ होता है क्योंकि इसका जघन्य काल एक समय, जघन्य स्थिति वाले की बात चल रही है, जघन्य काल एक समय है और वो कब होता है? अंतिम समय में होता है, अतः इसका जघन्य काल एक समय कहा, यानी कोई एक या अधिक जीव उसके अंतिम समय में है। पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण संख्यात है, अतः इनमें निरंतर संख्यात से अधिक काल तक उत्पन्न नहीं हो सकते। ऐसे थोड़े ही समयों तक लगातार ऐसा हो सकता है कि जो सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले हो और ये सभी कंडीशन पूरी करके जाने वाले हो, अतः इनका उत्कृष्ट काल संख्या समय कहा। इसी प्रकार अभी हमने उपशम यानी सॉरी वैकिरेक मिश्र की केवल बात करनी, उस मार्गणा की, कोई ना कोई जीव वैकिरेक मिश्र में आवे तो कहां कहां जा सकता है? देव में या नारकीय में, हम यह स्थिति की बात नहीं कर रहे। वैकिरेक मिश्र अवस्था प्राप्त करने वाले जीव, यानी कोई मरकर देव में जाए कोई मरकर नरक में जाए, ऐसे लगातार होता रहे तो कितने काल तक होगा? आवली के असंख्यात भाग। परंतु वो वैकिरेक मिश्रपना एक अंतर्मूर्त वाला काल है, वो लगातार कितने काल तक चलेगा? पल्ले के असंख्यात भाग। पर यहाँ बात जघन्य की बात है और उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, शायिक समय दृष्टि, उपशांत कषाय में मरा, सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ और वैकिरेक मिश्र के अंतिम समय में आया, तो ऐसे लगातार होता रहे तो संख्यात ही समय होगा। ऐसा हम नहीं स्थिति तो कम होगी वहां भी, हमने तो पहले सर्वार सिद्धि में दो बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है, फिर क्षायिक भी किया है, ऐसा भी लिया था, तो इतना ही उसमें समझना कि उसने पहले ही स्थिति घटाई है। अभी हम आगे बढ़िए। इसी प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि, अभी उपशम सम्यक दृष्टि के उत्कृष्ट कब होगी, उसके पहले समय में, और जघन्य कब होगी, उसके अंतिम समय में। उपशम में से जब वो हमने देखा था उपशम श्रेणी भी मांडी है, नीचे आया है और फिर वो वेदक करने जा रहा है, तब उसके अंतिम समय में उसकी जघन्य स्थिति होगी, और उत्कृष्ट उपशम श्रेणी में शुरू होने के समय में उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट, वो अंत कोड़ा कोड़ी होगी परंतु उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट का। हमारी मार्गणा यहाँ उपशम सम्यक दृष्टि की है, उपशम सम्यक दृष्टि है, उपशम श्रेणी की नहीं है, उपशम सम्यक को मार्गणा चल रही है। हाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि, इसमें भी जघन्य कब होती है, देखो हमने देखा था उत्कृष्ट किसके होती है, जो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व को आता है उसके पहले समय में उत्कृष्ट होती है। अब जो 24 की सत्ता वाला होकर सम्यक मिथ्यात्व में आया है उसके सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम समय में जघन्य होती है, तो उसका भी एक समय होगा, एक समय होता है ना उसका, अंतिम समय में एक समय होता है, तो लगातार होता रहे तो ये संख्यात समय हो गया। समय मिथ्या दृष्टि आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, उनमें भी अपने अपना अंतिम समय लेना है। अपगत वेदी, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत और सासाधन की प्ररूपणा घटित कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन मार्गणाओं में अंतिम समय में ही जघन्य स्थिति विभक्ति होती है। अपनी अपनी अलग होगी, उसका प्रमाण अलग है, परंतु कब होगी, तो अपनी अपनी मार्गणा के अंतिम समय में। अजघन्य स्थिति के विषय में हरेक मार्गणा की जो विशेषता है वह मूल में दी ही है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि अजघन्य हमेशा है, क्योंकि इसमें से तो सांतर मार्गणाएं होती है, तो उनकी जो विशेषता है वो हम पढ़ चुके हैं। ये उत्कृष्ट का और जघन्य का हमने काल देखा, अभी अंतर देखना है। यानी जघन्य स्थिति का भी अंतर और उत्कृष्ट स्थिति का भी अंतर अलग अलग से देखेंगे हम। अंतरानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, उनमें से उत्कृष्ट अंतरानुगम का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग निर्देश की अपेक्षा मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल कितना है, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। जघन्य अंतरकाल एक समय, हमने देखा है उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जी, जब वो उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, हो सकता है उसमें अंतर पड़ जाए, चारों ही गति की अपेक्षा बात चल रही है। और उत्कृष्ट अंतरकाल, ओहो अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, बांधी नहीं, बांधेगी नहीं। हाँ, बहुत लंबा काल है उत्कृष्ट ने, वो पूरा के पूरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाली। तथा मोहनी की अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि हमने देखा वो सदाकाल सर्वकाल रहते हैं। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सातों ही पृथ्वियों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों में अंतर पड़े तो एक कम से कम एक समय का पड़ेगा, और अधिक से अधिक कितना देखा, अंगुल का असंख्यात्व भाग प्रमाण। सभी तिर्यंच सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य ने ये तीन प्रकार के मनुष्य सामान्य देव चारों गतियों को लिया उन्होंने। भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव सभी एकेंद्रिय सभी विकलेंद्रिय। अभी यहाँ जो है कथन इतना ही है, उत्कृष्ट में अंतर। अभी वो उत्कृष्ट सत्तर कोड़ा कोड़ी हर जगह नहीं लेना, उस मार्गणा का उत्कृष्ट लेना है, क्योंकि अभी हमने सर्वार्थ सिद्धियों को देखा। यहाँ तो सर्वार्थ सिद्धि वाले उत्कृष्ट कब होगी, अंत कोड़ा कोड़ी है, परंतु पहले समय में होगी, हाँ बाद में अनुत्कृष्ट हो जाएंगे। सभी एकेंद्रिय, एकेंद्रिय में भी हमने देखा था देव में उत्कृष्ट बांध कर आए हैं, पहले समय में घटित होता है, तो हो सकता है उसमें अंतर पड़ जाए। सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी पांचों स्थावरकाएं, सभी त्रस, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, अवदारक काय, अवदारिक काय योगी, अवदारिक मिश्र काय योगी, वैक्रिक काय योगी, कार्मण काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि, असंयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, छो लेशा वाले, यहाँ छो लिए हूँ, भव्य अभव्य, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, काना उसकी मात्रा रहेगी, मिथ्या दृष्टि, संगी असंगी, आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। यहाँ कुछ कुछ मार्गणाएं छोड़ी है, ख्याल आया कुछ किसको छोड़ा है, वैकिरिक मिश्र को छोड़ा और सांतर मार्गणाओं को, आहारक वगैरह ऐसे, हाँ क्योंकि यहाँ जो अंतर कहा था वो कितना कहा, अंगुल का असंख्यात भाग। अब उतने काल तक वह मार्गणा रहनी चाहिए तभी अंतर घटित होगा, ख्याल है, क्योंकि उतने काल में वो दोबारा उत्कृष्ट तक आना चाहिए तब उत्कृष्ट का अंतर घटित होगा। भानुबेन ख्याल में आता है, देखो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ये मार्गणा लंबे काल तक चले तो कितने काल तक चलेगी, पल्ले के असंख्या तो भाग, और यहाँ बात किसकी चल रही है, अंगुल का, कौन सा बड़ा है, अंगुल का असंख्या तो भाग बड़ा है कि पल्ले, पल्ले बड़ा है कि अंगुल बड़ा है, बड़ा है, हाँ देखो क्योंकि ये पल्ले की जीव वर्गशाला का है ना, उससे दुगनी अंगुल की वर्गशाला का है, आप नहीं समझेंगे, हाँ नहीं नहीं मैं कहूँ नहीं, आपको थोड़ा सीखो ना नया, जो हमने वर्गधारा देखी थी द्विरूप वर्गधारा, वो शुरुआत होती है दो का वर्ग चार से, चार ये पहला वर्ग स्थान है, दूसरा वर्ग स्थान कौन सा होगा, सोलह, हमें वर्ग का वर्ग करते जाना है, पहला वर्ग है चार, चार का वर्ग सोलह, सोलह का वर्ग 256, 256 उसका पनट्ठी, अब एक नंबर पर है ये, दो नंबर पर, तीन नंबर पर, चार नंबर पर, इसको कहते हैं वर्ग शलाका, वर्ग का वर्ग कहे ना, पहले नंबर का वर्ग, दूसरे नंबर का वर्ग, तीसरे नंबर का वर्ग, चौथे नंबर का वर्ग, इसको क्या कहेंगे, वर्गशाला का। अब 16 की वर्गशाला का कितनी है, वर्ग कितना है नहीं पूछा, वर्गशाला का कितने नंबर पर है, वो दो नंबर पर है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो 16 की वर्गशाला का है दो, और पनट्टी की वर्गशाला का है चार, इसकी वर्गशाला का है 2 और इसकी वर्गशाला का है 4। ऐसे असंख्यात वर्गस्थान चले जाने पर पल्ले आता है। और जितने स्थान जाने पर पल्ले आया ना, मान लेते हैं कितने स्थान गए तो हम उसको व कहेंगे, तो और उतने ही वर्गस्थान आगे चले जाएंगे तो अंगुल का प्रमाण आएगा, तो उसके वर्गस्थान की कीमत होगी 2 व। जैसे हमने ये 2 और 4 देखे ना, ऐसे वहां पल्ले की वर्गशाला का प्रमाण व कहेंगे, तो उससे और व बार आगे चले जाओ, पल्ले के वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग करते जाओ तो अंगुल आएगा। अंगुल कहो या सूचंगुल कहो एक ही बात है, यानी उसमें प्रदेशों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। पल्ले में तो हम वो तो समयों की संख्या देखते हैं, रोमखंडों की संख्या देखते हैं, और वहां तो प्रदेशों की संख्या देखते हैं। तो उसमें जितने प्रदेश है उतना समय वाला काल ऐसा लेना। तो उस अंगुल का असंख्यात वा भाग है, उसमें असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है, इतना बड़ा काल है। तो यहाँ क्या कहते हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग लब्धि पर्याप्तक है और ये उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है, अंगुल का असंख्यात विभाग। तो जितनी बड़ी लंबी मार्गणा चलेगी उतने काल में वो वापिस उसमें आना चाहिए ना, उत्कृष्ट स्थिति के साथ कोई नया जीव उसमें जन्मना चाहिए, तभी हम कहेंगे उत्कृष्ट स्थिति का अंतर होगा। तो मार्गणा का काल जहां छोटा है वहां यह अंगुल नहीं घटित होगा, ये बात मैं कहना चाहती हूं। इसलिए यहां ऐसी मार्गणाओं को नहीं लिया है जिनमें जीव ही नहीं होगे, तो उत्कृष्ट क्या और जघन्य क्या। अब हम किस किस को छोड़ा हम देखते हैं, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही। आप कहेंगे ऊपर संयतों को लिया, सामयिक संयतों को लिया, परिहार विशुद्धि को लिया, सामयिक छेदोपस्थापना, परंतु सामयिक छेदोपस्थापना नाना जीवों की अपेक्षा कितने काल तक रहेगा, हमेशा रहेगी, तो उसमें यह बात घटित हो सकती है। यहां जितनी सारी हमने मार्गणाएं देखी है वो हमेशा रहने वाली मार्गणाएं हैं, तो उनमें यह उत्कृष्ट अंतर घटित हो सकता है, इतनी बात लेनी। उनकी अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग होगी, जैसे सर्वार्थ सिद्धि वालों में उत्कृष्ट स्थिति का अंतर, यानी उत्कृष्ट स्थिति के साथ वहां जन्मा, वहां हमेशा तो जीव पाए जाएंगे परंतु कोई उत्कृष्ट स्थिति के साथ जन्मा है और फिर इतने लंबे काल के बाद फिर कोई जीव नया उसमें उत्कृष्ट स्थिति के साथ उत्पन्न होगा, तो जघन्य अंतर कितना होगा एक समय, और अधिक से अधिक लंबे काल तक कोई नहीं उसमें उत्कृष्ट स्थिति से आया, अनुत्कृष्ट के साथ आएंगे, एक समय कम को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे, तो अनुत्कृष्ट के साथ आता रहे और बाद में फिर उत्कृष्ट के साथ आए तो अंगुल का असंख्यात विभाग, इसको कहते अंतर। जब इन ख्याल में आता है ना, काल में और अंतर में कंफ्यूजन होता है बहुत बार, और हुआ कंफ्यूजन तो पूछ लेना फिर। तो ये जो हमने ऊपर अभी अभी मार्गणाएं इतनी लंबी लिस्ट देखी ना, वो हमेशा ही निरंतर पाई जाने वाली मार्गणाएं हैं, उनमें ये अंतर लंबे से लंबे घटित हो सकता है। अब हम नीचे वाले पढ़ेंगे, मनुष्य अपर्याप्त को में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतर काल ओघ के समान है। अंगुल का संख्यात विभाग तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यानी ये मार्गणा का काल लिया, अजघन्य में जो अंतर घटित किया उत्कृष्ट, वो मार्गणा का काल लिया, क्योंकि वो मार्गणा जब तक है अभी वो अंतर होने का समय आया उसके पहले पहले कोई जीव वहां अजघन्य के साथ उत्पन्न हुआ है, और फिर बीच में अंतर पड़ा तो कितना पड़ेगा, पल्ले के असंख्यात है। देखो इसका लगातार काल भी पल्ले का असंख्यात भाग है और अंतर पड़े तो भी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का असंख्यात भाग है। मार्गणा का ही अंतर इतना है, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर घटित कर रहे हैं। अंतर हाँ हाँ वही लिया है, परंतु नाना जीव है ना। अच्छा मैं जो उसी मार्गणा में रहते हुए का काल बता रही थी वो एक जीव की अपेक्षा घटित होता है, यहाँ तो नाना जीवों की अपेक्षा घटित करना है और वो उत्कृष्ट वालों का, यानी वो मार्गणा नहीं भी रहेगी और फिर जब होगी तब वो उत्कृष्ट के साथ आएगा, ऐसा जीव लेना है। मेरे कुछ घटित करने में गड़बड़ हो गई। देखो क्या कहना चाहते हैं, एक जीव की अपेक्षा हम अंतर घटित करते हैं तो उसी मार्गणा में रहते हुए उसमें आना चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ घटित कर रहे हैं तो जब कभी ना अलग कोई जीव उसमें जन्मेगा तब लेना है अंतर। वो भी उन्होंने अंगुल का असंख्यात भाग लिया। और अनुत्कृष्ट में उन्होंने मार्गणा का अंतर घटित किया है। यहाँ बांधने वाले की बात ही नहीं है, मनुष्य अपर्याप्तों में तो अन्य जगह से इसमें उत्कृष्ट के साथ आए हुए जीव है। मनुष्य तीरंज में उत्कृष्ट स्थिति बांधी है और अंतर्मूर्त के बाद इनमें उत्पन्न हुए हैं। हाँ उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाले का ही अंतर है उतना है ना, और वही जीव मरकर इनमें आएंगे अंतर्मूर्त के पश्चात, इसलिए इनमें भी वो अंतर घटित किया। नहीं हो सकते, हाँ फिर भी वो असंख्यात तो होते हैं, हाँ पर उनमें अंतर पड़ता है, अंतर पड़ सकता है और कभी जब अंतर के बाद होगे तो थोड़े होगे, अधिक से अधिक असंख्यात हो सकते हैं, ये बात हमने देखी जब हमने भागा भाग देखा था, तो उत्कृष्ट वाले अनंत वे भाग देखा था और अनुत्कृष्ट वाले अनंत बहुभाग प्रमाण लिखे थे। देखो फिर से दोबारा, उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधते हैं, संगी पंजन्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टि। अब यहां लब्धि अपर्याप्तकों में कौन जीव जन्म लेते हैं, देव और नारकी तो नहीं आएंगे, मनुष्य तीरंज आएंगे, तो उत्कृष्ट स्थिति बांधी और अंतर्मूर्त में मरकर इनमें आ सकते हैं। हमने देखा था उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला जीव एक अंतर्मूर्त के बाद इनमें मरकर आता है, तो इनकी उत्कृष्ट स्थिति कब घटित होगी, पहले समय में। अब उत्कृष्ट स्थिति बांधने वालों में उत्कृष्ट अंतर कितना पड़ता है, अंगुल का संख्या तो अभाव, और तब इनमें जन्मेगा। और इनमें तो और कंडीशन है कि तब वो मार्गणा का अंतर न हो, इनमें जन्मने वाले अन्यत्र कोई जन्मने वाले भी होगे ना, क्योंकि उसमें से मरकर तो कितने ही पर्याय में जाते हैं, परंतु इनमें जन्मने वाले जो जीव है उनमें भी इतना अंतर घटित होगा, अंगुल का असंख्यात भाग। हाँ सांतर मार्गणा है तो भी ये घटित किया है, एक जीव की अपेक्षा सांतर मार्गणा में अंतर घटित करते ना, एक जीव की अपेक्षा, तो वो जीव दोबारा उसमें आवे। तो मैं अभी पूछती हूं आपको, एक जीव की अपेक्षा लब्धि अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट स्थिति का अंतर कितना होगा, एक जीव की अपेक्षा लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में उत्कृष्ट स्थिति का अंतर कितना होगा। क्या कहते हैं आप, ये कहते नहीं होगा, आप क्या कहते हैं कैसे होगा? सही बात है, उत्कृष्ट स्थिति कब होती है, पहले समय में, अब वो जीव तो दूसरी पर्याय में चला जाएगा और लगातार भी उसमें आएगा तो भी वो तो पंचेंद्रिय में आने वाले का ही उत्कृष्ट रहेगा, तो उत्कृष्ट स्थिति का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं होगा, नहीं होगा। आपने बताया ना अभी, एक यहाँ नाना जीव की अपेक्षा बात चल रही, एक जीव और नाना जीव में बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर से एक जीव की अपेक्षा कहीं अंतर घटित करना है हमको, हम दूसरे किसी उदाहरण के तौर पर अन्य बात करेंगे, हमको पंचेंद्रिय जीवों में, अभी मैं बहुत आसान बता रही हूँ, हाँ, मिथ्यात्व गुणस्थान का अंतर कितना होगा पंचेंद्रिय जीवों में नाना जीवों की, अच्छा एक जीव की अपेक्षा पहले घटित करेंगे। अपनी मार्गणा क्या है, पंचेंद्रिय है, हाँ, तो मिनिमम अंतर कितना पड़ेगा, वो पंचेंद्रिय रहना चाहिए, इतनी बात है। मिथ्यात्व का अंतर कब कहे गए, मिथ्यात्व में था, सम्यक्त्व में चला गया, फिर मिथ्यात्व में आया, तो जघन्य अंतर कितना होगा, अंतर्मूल। और उत्कृष्ट जो अभी हम फिर मिथ्यात्व में लाना है ना, हाँ, तो 132 सागर वगैरह वगैरह उसको लेना, पंचेंद्रिय वो तो रहना चाहिए। इस तरह से सोचना है हमें, क्या कैसे सोचना है उसकी मैं आपको एक, कि उसके उस मार्गणा में रहते हुए फिर दोबारा उसमें आने चाहिए। यदि मैं कहूँ वो मनोयोगी है और हमको मिथ्यात्व का अंतर घटित करना है, एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं होगा क्योंकि योग का काल छोटा है, वो सम्यक तो प्राप्त करे और फिर दोबारा मिथ्यात्व में आए, उतना अंतर्मूर्त उसमें नहीं होगा, इस तरह से लेना है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा लेना है। अब पहले जो हमने पंचेंद्रिय का उदाहरण लिया था, पंचेंद्रियों में एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य अंतर, अभी सोचो एक अंतर्मूर्त घटित होता है, तो पंचेंद्रियों में नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व का अंतर कितना होगा, नाना जीवों की अपेक्षा, यानी ऐसा चाहिए कि सभी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि हो गए तो उसमें अंतर नहीं होगा क्योंकि पंचेंद्रियों के रहते हुए मिथ्या दृष्टि हमेशा ही पाए जाएंगे। अब यहां नाना जीवों की अपेक्षा किसका अंतर ले रहे, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का अंतर नहीं देख रहे हम, उसमें उत्कृष्ट स्थिति के साथ जन्मने वालों का अंतर देख रहे हैं। तो एक बार कोई उत्कृष्ट स्थिति के साथ जन्मा है और बहुत बार काल तक नहीं जन्मा, तो दोबारा कब जन्म सकता है, वो वहां मार्गणा सांतर हो निरंतर, उसकी बात यहां नहीं ले, हाँ, तो जब कभी होगा तब, एक जीव की अपेक्षा में उसी मार्गणा में रहना चाहिए। अब नाना जीवों की अपेक्षा जब उत्कृष्ट स्थिति की हमको बात करनी है, ये वो उसी मार्गणा में रहने वाली बात, नाना जीवों की अपेक्षा अजघन्य में या अनुत्कृष्ट में लगाएंगे हम, जो अभी आगे चल के लगाने वाले हैं। उत्कृष्ट स्थिति वाला जीव जब कभी आगे चलकर पैदा होगा तो कब होगा, जो हमने ओघ में देखा था, क्योंकि वही जीव इसमें आने वाले है मरकर, तो वह अंगुल का असंख्यात भाग घटित होता है। अब यहां देखो अनुत्कृष्ट वालों का कितना है, तो अनुत्कृष्ट स्थिति वाले नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय, अंतर एक समय कैसा हुआ अनुत्कृष्ट स्थिति वाले, देखो कोई जीव उसमें थे, उनका अंतिम समय था लब्धि अपर्याप्तकों का, और उसमें अभी अंतर पड़ गया, अनुत्कृष्ट वाले थे और अंतर पड़ गया, एक समय के लिए वो कोई जीव उसमें नहीं है और वापस अनुत्कृष्ट के साथ आ गया, तो एक समय का अंतर पड़ गया, तो अनुत्कृष्ट का भी जघन्य अंतर एक समय हो सकता है, उस मार्गणा का जघन्य अंतर एक समय हो सकता है, लब्धि अपर्याप्त में कोई भी जीव न हो ऐसा एक समय तक बन सकता है, इसलिए वो अजघन्य का भी जघन्य अंतर एक समय, और वो मार्गणा ही न हो पल्ले के असंख्यात विभाग, इसलिए अजघन्य में उसको घटित किया। अनुत्कृष्ट, सॉरी, अजघन्य में वही कहेंगे पर यहां अनुत्कृष्ट की बात चल रही है। इसी प्रकार सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। उसमें भी वो सांतर मार्गण है तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले का संख्या था। काल में भी हमने उत्कृष्ट काल पल्ले का संख्या था भाग देखा था, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर में भी उत्कृष्ट अंतर पल्ले का संख्या था भाग है। हाँ वैसा ही ले है। विशेषार्थ में आएगी बात। वैकृत मिश्र कायोगियों में मोनियों की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओघ के समान है। वैकृत मिश्र में उत्कृष्ट किसके होगा? हमने देखा ना मनुष्य और तीरंच उत्कृष्ट स्थिति बांधकर नरक में जाते हैं, तो वैकृत मिश्र काल में उसके उत्कृष्ट रहता है, उनका भी वो अंगुल का असंख्यात भाग उत्कृष्ट अंतर, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर काल एक समय, ये वैकृत मिश्र का अंतर है। यहाँ पर कोई भी जीव वैकृत मिश्र में न उत्पन्न हो तो कितने, कोई भी अभी नहीं है तो एक समय के बाद फिर कोई ना कोई आ गया, तो ऐसे जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 12 मुहूर्त है। ये देवनार की दोनों की अपेक्षा मिलकर वैकृत मिश्र की बात करें, 12 मुहूर्तों में तो कोई ना कोई वहां जन्मेगा ही। आहार का योगी और आहार मिश्र का योगी जीवों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओघ के समान है। यहाँ उत्कृष्ट उनके अपने योग्य उत्कृष्ट होगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर वाला, परंतु उसमें जो मैक्सिमम है उसको लेना, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्व है। यह मार्गणा का अंतर को यहाँ अनुत्कृष्ट में लिया है। आहारक का योगी ने आहारक शरीर वाले कोई नहीं होगे मुनिराज, कितने अधिक से अधिक कितने लंबे काल तक नहीं होगे वर्ष पृथक। इसी प्रकार अकषाय और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए, उनमें भी वर्ष पृथक का उपशम श्रेणी चढ़ने वालों में अंतर होता है, वही अंतर अकषायों का और यथाख्यात संयतों का लेना। अकेले यथाख्यात संयत का अंतर नहीं है, उत्कृष्ट स्थिति के साथ यथाख्यात संयत लेना, क्योंकि क्षपक यथाख्यात संयत लेकर कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहां विभक्ति नहीं है। यह 11वां गुणस्थान लेना है। अपगत वेदियों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओघ के समान है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले लिए ना, तो क्षपक में भी उसको अनुत्कृष्ट ही कहेंगे हम। अपगत वेद होता है तब अनुत्कृष्ट ही स्थिति रहती है, जब क्षपक का अंतिम समय है सूक्ष्म सांप्रदाय का तभी जघन्य कहेंगे, उसके अलावा जो बाकी है उसको हम अनुत्कृष्ट ही कहेंगे। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों के कहना चाहिए, जो उत्कृष्ट ने वो सभी अनुत्कृष्ट कहेंगे। उत्कृष्ट स्थिति के साथ अंतर, ओग के जमाने में अंगुल का संख्या तो भाग ले सकते हैं। पहले समय में घटित हो सकता है ना, उत्कृष्ट के साथ जो है उसमें हम देखते हैं क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक वाले होते हैं, चढ़ने वालों में भी, और वो उपशम में ज्यादा होगी ना स्थिति, उत्कृष्ट किसके होगी, उपशम सम्यक दृष्टियों में। वो फिर भी अनुत्कृष्ट ही कहेंगे उसको, उत्कृष्ट वहां नहीं पाए जाएंगे। उपशम में क्षपक की अपेक्षा उपशम वालों की स्थिति ज्यादा ही होती है, ऐसे भी हर गुणस्थान में, वैसे उपशम में भी समान होगी अपने अपने गुणस्थान में, नहीं समझे? उपशम वाले के नौवे है वो समान है एक दूसरे के साथ, और क्षपक वाले नौवे है वो आपस में समान है, समानता की अपेक्षा समानता है। अनिवृत्तिकरण जो नाम दिया है तो उपशम की अपेक्षा उनका सबका परिणाम समान है, और क्षपक भी अनिवृत्तिकरण कहते हैं तो क्षपकों की जितनी विशुद्धि है उतनी सब में समान है, परंतु उपशम वाले की और इनकी ऐसी समानता नहीं होगी, उनमें डिफरेंस है। उपशम श्रेणी के चढ़ते समय जो, क्योंकि चढ़ते समय तो अलग अलग है, वहां विशुद्धि अलग अलग है, परिणाम वर्तमान के परिणाम में समानता है, स्थिति में तो वेरिएशन होगी वहां पर। हमने देखा था कि जितने प्रमाण में स्थिति है उतने प्रमाण में कांडक वगैरह होते हैं, ऐसे वो तो बहुत उसमें सूक्ष्मता है। यहाँ क्या कहते हैं अभी पढ़ेंगे, उपशम सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल ओग के समान है। ये सबको ओग के समान कर दिया उत्कृष्ट वालों को, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन रात है। यह उपशम सम्यक दृष्टियों में हर जगह 24 दिन रात कहा है, और हम पढ़े रहे तो चौथे के लिए 7 दिन रात, पांचवे के लिए 15 दिन रात, ऐसे अलग अलग हमने पढ़े थे। इस पुस्तक में जयधवला में सर्वत्र 24 दिन रात का ही अंतर बताया है। अथवा अकषायी यथाख्यात संयत, अपगत वेदी और सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्व है, और उपशम सम्यक दृष्टियों में साधिक 24 दिन रात हैं। अथवा करके दूसरी अपेक्षा बताएं, पहले तो ओग के समान बताया था, और यहाँ कहते हैं वर्ष पृथक, यानी उपशम श्रेणी की अपेक्षा यहाँ ली है। सासाधन सम्यक दृष्टियों में पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण हैं, और अक्षायिक सम्यक दृष्टियों में 6 महीना है। हमने देखा था कोई क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करता है, उसमें अंतर 6 महीने का है। वेदक में से क्षायिक होंगे ना तो उसमें अंतर पड़ेगा उत्कृष्ट में, उत्कृष्ट तो 6 महीने का अंतर, यानी हर 6 महीने में कोई ना कोई जीव एक हो या आने को क्षायिक समय दृष्टि हो गई ही, यानी इतना बड़े में बड़े अंतर है, जल्दी जल्दी भी हो गए। जघन्य अंतर तो एक समय का है, क्या कहते हैं? हाँ, अथवा कह के ये बताइए, अथवा ये ऊपर के लिए है, ये अकशा यथा क्या अपगतवेदी और सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों के लिए अथवा बताया उन्होंने। अब विशेषार्थ, उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव यदि संसार में न हो तो, उपशम समय दृष्टियों में ये ऊपर बताया था कितना है अंत 24 दिन रहा, और दूसरा मत सादिक। हाँ दो दो अलग अलग, दो अलग अलग है अभी उसमें, दो दो मत अलग है ना कुछ आचार्यों के। वो इसके पैराग्राफ के अंत में है, हम पढ़ेंगे वहां तक। हाँ देखो विशेषांक पढ़ेंगे, शुरू से ही सब बताया इसमें। उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव यदि संसार में न हो तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक नहीं होते। अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं, अतः इनका अंतरकाल नहीं है। मूल में सातों पृथ्वियों के नारकी आदि और जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनकी प्ररूपणा को ओग के समान कहा है। ये तो हमने वो बड़ी लिस्ट भी पढ़ी थी। तथा इनके अतिरिक्त और जितनी मार्गणाएं हैं उनमें भी उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओग के समान है, अतः उन सब में उत्कृष्ट स्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। जहाँ जहाँ ओग के समान कहा है वहाँ यही बात समझनी चाहिए। हाँ इन मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति का भी अंतरकाल पाया जाता है, जिसका खुलासा निम्न प्रकार है। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सांसादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का जघन्य अंतर एक समय यानी उस मार्गणा का बता रहे, और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। वैक्रिक मिश्र का योग का जो मार्गणा का अंतर चल रहा है अभी, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 12 मुहूर्त है। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। उपशम श्रेणी का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। क्षपक अपगत वेद और सूक्ष्म सांप्राय संयम का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। अब इन मार्गणाओं का ही अंतर बता रहे हैं, उसमें अनुत्कृष्ट को घटाएंगे बाद में। उपशम सम्यक्त्व का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 24 दिन रात है। अतः इन मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। जो अपनी अपनी मार्गणा का अंतर है वही अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर होगा, जघन्य और उत्कृष्ट। यहाँ पहले जो उपशम श्रेणी का अंतरकाल कहा उससे मोह सत्कर्म वाले अकषाय और यथाख्यात संयतों का अंतरकाल लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अकषाय और यथाख्यात संयत कहते हैं तो विभक्ति वाले चाहिए, मोह की सत्ता वाले चाहिए, तो 11वां गुणस्थान ले। यहाँ अथवा कहकर हमने देखा था ना, अथवा कहकर फिर उन्होंने दूसरी कुछ प्ररूपणा कर दी। कुछ मार्गणाओं के अंतरकाल में कुछ फर्क बतलाया है जो मूल में ही दर्ज है, कितना फर्क है वो उन्होंने बताया है। अकषायी यथाख्यात संयत अपगत वेदी और सूक्ष्म सांप्रायिक संयत में मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव उपशम श्रेणी में ही होते हैं। और उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, अतः अथवा कहकर इनका उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व कहा है। परंतु कुछ आचार्यों का मत यह भी रहा है कि सभी उपशम श्रेणी वाले मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती, सभी उपशम श्रेणी वालों के ये मोनी की उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकती, बहुत कम जीवों के होती है, इसलिए वो बड़ा अंतर कहा। अतः उनके मतानुसार अकषाय आदि में उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट अंतर ओग के समान अंगुल का असंख्यातवा भाग भी कहा है, जो संभवतः वीरसेन स्वामी को भी इष्ट था तथा उन्होंने अथवा कहकर दूसरे मत का भी उल्लेख कर दिया है। ये बीच में अंत से उल्लेख कर दिया है। इसी प्रकार उपशम समय दृष्टि, सासादन समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टियों में भी मोनी की उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट अंतर के विषय में मतभेद जान लेना चाहिए। यह अंतर मूल में दिया ही है, यानी उस मार्गणा का या उस क्षायिक सम्यक्त्व का जो उत्कृष्ट अंतर है वही यहाँ 6 महीना बताया, और यहाँ बात उत्कृष्ट स्थिति वाले की थी, उसमें अधिक अंतर घटित होगा। पहले वो बताइए सबका, उन्होंने ये जो ओग के समान जो था ना, उसमें क्षायिक भी लिए थे, वेदक भी दिए थे। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतरानुगम समाप्त हुआ। अब जघन्य अंतरानुगम का प्रकरण है। ओग की अपेक्षा जहां जघन्य कहते हैं, यहां बात नाना जीवों की है। एक जीव की अपेक्षा अंतर कितना होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो क्षपक है वो वापस फिर उसमें आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट उसका समय है। नाना जीवों की अपेक्षा घटित होगा अंतर। हाँ, तो अब जघन्य अंतरानुगम प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर काल एक समय के लिए कोई अंतिम समय में नहीं था, और उत्कृष्ट अंतर काल 6 महीना है, जो क्षपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर है, तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतर नहीं है। जैसे हमने देखा था अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है, ऐसे यहाँ अजघन्य का अंतर नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, यानी ये जहाँ जहाँ घटित होता है 6 महीने का अंतर, तो जहाँ जहाँ क्षपक श्रेणी पाई जाएगी ऐसे मार्गणाएं गिनाई हैं। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, लोभ कषाई, क्योंकि ये लोभ कषाय का ही उदय होता है सूक्ष्म संप्राय में, हाँ इसलिए लोभ कषाय लिए। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत। अब सामायिक और छेदोपस्थापना लिए हैं तो उनका भी क्षपक का अंतिम समय लेना, उनके योग्य जघन्य कथन यही होगा, जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट 6 महीना, इसकी समानता है। वो 1 समय वाली जघन्य स्थिति उसकी समानता नहीं लेना, उस मार्गणा की जो जघन्य बात है उसकी बात लेने है। चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी, हाँ अब उसमें तो लोक के उदय सहित चढ़ने वाले, उसमें अंतर अलग होगा। क्रोध के उदय सहित चढ़ने वाले, उसमें अलग अलग कषायों के उदय का अंतर अलग होगा। यह चक्षु अचक्षु दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, भव्य सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी जघन्य अंतर वहीं पर घटित होगा सूक्ष्म सांप्राय में। संगी और आहारकों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। अवधि ज्ञानी जीवों में मोनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है। इसका अर्थ ख्याल में आता है, अवधि ज्ञान सहित क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव, उनमें वर्ष पृथक्त्व का अंतर होगा। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों के अंतरकाल के समान है। हमने उत्कृष्ट का कितना देखा था? अंगुल का वो देखा था ना, हाँ, सभी नारकी वगैरह देखा था। जघन्य एक समय उत्कृष्ट, अंगुल का संख्यात्व भाग। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव हमने उत्कृष्ट में भी वहां वैसे घटित किया था। अभी जघन्य में सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त त्रस अपर्याप्त पृथ्वी का एक आदि चार स्थावर का है बादर पर्याप्त बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त। देखो यहां तो जघन्य करने वाले जीव ले, जघन्य स्थिति का बंध जिनके होता है ऐसी पृथ्वी का एक चार स्थावर बादर पर्याप्त करेंगे। वैक्रिय कायोगी विभंग ज्ञानी परिहार विशुद्धि संयत ये हमने देखा जघन्य कब होता है उसके अंतिम समय में ऐसे जरा सोचना। अभी हम उत्कृष्ट देख के आए ना, हाँ वो पहले, हाँ संयता संयत पीत लेशा वाले पद्म लेशा वाले यही परिहार विशुद्धि के अंतिम समय में वो लेशा होती है देखा था। वेदक समय दृष्टि यानी कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय जीवों के कहना चाहिए उनमें भी इतना अंतर पड़ेगा, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर इतना होगा। तिर्यंचों में तीर्थ हुआ है वो तिर्यंचों में मोहनीय की जघन्य और अजघन्य स्थिति विभक्ति की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। हमेशा ही हमने देखा ना सर्वदा होते पहले देखा था, हाँ इसी प्रकार सभी एकेंद्रिय चारों स्थावर का है चारों स्थावर का है बादर चारों स्थावर का है बादर अपर्याप्त अपर्याप्तों को लिया क्योंकि ऊपर हमने पर्याप्तों को लिया था चार स्थावर का है बादर पर्याप्तों का अंतर वहां ओके समान लिया था यानी उत्कृष्ट के समान। चारों स्थावर का है सूक्ष्म चारों स्थावर का है सूक्ष्म पर्याप्त चारों स्थावर का है सूक्ष्म अपर्याप्त बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति का है प्रत्येक शरीर अपर्याप्त सामान्य वनस्पति निगोद वनस्पति का एक बादर वनस्पति कायिक बादर पर्याप्त वनस्पति का एक बादर अपर्याप्त वनस्पति का एक सूक्ष्म वनस्पति का एक सूक्ष्म पर्याप्त वनस्पति का एक सूक्ष्म अपर्याप्त बादर निगोद पर्याप्त बादर निगोद अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद पर्याप्त सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त औदारिक मिश्र का योगी कार्मण का योगी मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत कृष्ण आदि तीन लेशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि असंग और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए उनमें जघन्य और अजघन्य हमेशा ही पाए जाएंगे उनमें अंतर नहीं होगा। अब यहीं रुकते हैं हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकाल।